ओम शांति, ओम शांति। आप सभी आध्यात्म प्रेमियों को बहुत बहुत प्रणाम। इस मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में आध्यात्म प्रेमियों की भूमिका, इस विषय पर परिसंवाद में आप सभी भाग ले रहे हैं और अब तक बहुत कुछ आपने सुन लिया है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि हम सब शांत प्रिय आत्माएं हैं, क्योंकि जो आध्यात्म प्रिय होता है वो शांति प्रिय भी होता है, प्रभु प्रिय भी होता है। और जो शांति प्रिय प्रभु प्रिय है, अवश्य उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है कि ये समाज में भी शांति आ जाए, यह संसार सुखमय बन जाए, क्योंकि यह भगवान की दुनिया है और ईश्वर की यह रचना है। तो ईश्वर सुख स्वरूप है, सुख का दाता है, तो उनकी यह रचना दुख स्वरूप नहीं है, उनकी रचना भी सुख स्वरूप है। हम सब सुख स्वरूप हैं, तो सुख स्वरूप भी हैं, शांत स्वरूप भी हैं, प्रेम स्वरूप भी हैं, क्योंकि आत्मा के ही ये मूल गुण हैं। उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार इन मूल्यों को अपने जीवन में अनुभव करें, क्योंकि ये मूल्य हमारे अंदर ही निहित है, ये मूल्य हमें बाहर से नहीं लाने हैं। अगर हम समाज में शांति चाहते हैं तो पहले व्यक्तिगत शांति चाहिए। व्यक्तिगत शांति ही समाज में शांति का अनुभव कराएगी। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो व्यक्तिगत शांति से समाज में शांति आएगी, न कि समाज में शांति से व्यक्तिगत शांति आएगी। और व्यक्तिगत शांति अर्थात आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाए तो शांति तो हमारे पास ही है। शांति हमसे कितनी दूर है, केवल एक सोच की दूरी पर है। और वो सोच अगर सही रूप से आ जाए मन में तो शांति तो हमारे पास ही है। तो राजयोग के माध्यम से हम इन मूल्यों को बहुत सहज अनुभव कर सकते हैं, पहले आत्मचिंतन के द्वारा, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। तो आत्मचिंतन ये राजयोग का पहला कदम है, जिसमें हम स्वयं को शांत स्वरूप आत्मा निश्चय करते हैं। फिर दूसरा कदम है उस शांति के स्रोत परमात्मा को पहचान कर उनसे संबंध जोड़ना। तो राजयोग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से संबंध। अब आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, उसकी पहचान तो आपको कल मिल गई। अब कैसे उनसे संबंध जोड़ें, उसकी विधि क्या है, उसका आधार क्या है, वो आज हम देखेंगे और फिर अभ्यास भी करेंगे। और तीसरा कदम इन गुणों को अनुभव करने का है कि जितना हम औरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, इन गुणों का चिंतन औरों के प्रति करते हैं, उतना उतना हमारे गुण भी अपने आप बढ़ते हैं। जिसके लिए कहा गया है धन दिए धन ना खुटे, वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है, तो क्या कहेंगे? कौन सा धन? ज्ञान धन, प्रेम धन, शांति धन। केवल ज्ञान धन ही नहीं, विद्या धन ही नहीं, परंतु जितने भी ये गुण है आत्मा में, ये भी जितना हम दान करते हैं उतने ये गुण हमारे में भी बढ़ते हैं। जैसे ज्ञान देने से बढ़ता है, वैसे शांति भी देने से बढ़ती है, प्रेम देने से बढ़ता है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, पर देने से बढ़ता है। कोई कहे मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, कई कहते हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए कि तुम कितनों को प्यार करते हो, अवश्य वो भी नहीं करता होगा, तो कौन उसे प्यार करेगा? तो अगर हम औरों को प्यार देते हैं तो अपने आप हमें प्यार मिलता है। लव बिगेट्स लव। और प्रेम या प्यार कोई मांगने की चीज नहीं है, इसके लिए पोथियां नहीं पढ़नी पड़ती है, शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा है ना, ढाई अक्षर का ये शब्द है प्रेम, जिसको हम अगर पढ़ना जान जाएं तो हम सच्चे पंडित हो जाएं। चाहे पोथी पढ़त पढ़त कोई पंडित नहीं बना, पर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही पंडित होता है। अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप को समझ जाए, अपने गुणों गुण को समझ जाए कि प्रेम मेरे अंदर ही निहित है, शांति मेरे अंदर ही निहित है। शांति का चिंतन, प्रेम का चिंतन करने से अनुभूति होती है, उस शांति प्रेम के सागर से संबंध जोड़ने से अनुभूति होती है, और दूसरों के प्रति शुभावना शुभकामना रखने से ही अनुभूति होती है शांति और प्रेम की। ये बांटने से गुण बढ़ते हैं, मांगने से नहीं मिलते हैं। किसी से भी अब देखिए, कोई फूल है, हम उसे कहें हे फूल मुझे सुगंध दो, अब वो फूल सुगंध कैसे देगा? वो तो दे ही रहा है, लेना हमें है। तो गुण कोई मांगा थोड़ी जाता है, गुण तो अधिकार से हम ले सकते हैं बिना मांगे। अब यही राजयोग हमें सिखाता है कि ये गुण तो तुम्हारा अधिकार है, जो परमात्मा से तुम अधिकार से प्राप्त कर सकते हो और अपने स्वेच्छा से दूसरों को बांट भी सकते हो, अपने मन के संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर। तो राजयोग क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है, वो आज हम देखेंगे। अगर हम जो कुछ भी आपने राजयोग से संबंधित सुना है उसको हम सार में वर्णन करें, तो योग अर्थात संबंध, जोड़, मिलन, और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से आत्मा का संबंध या मिलन। तो सर्वश्रेष्ठ से संबंध है, इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधि से हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, क्योंकि विधियां भी अनेक हैं, भगवान से मिलने के अनेक रास्ते बताए जाते हैं। समझते हैं कि परमात्मा एक चोटी पर विराजमान है, जैसे पहाड़ की चोटी होती है, उस चोटी पर पहुंचने के अनेक मार्ग होते हैं, लेकिन राजयोग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जितना ही श्रेष्ठ है उतना ही सुगम है, उतना ही सरल है, उतना ही शॉर्टकट है। हम यही पसंद करेंगे ना, पहुंचना है चोटी पर, लेकिन कैसे पहुंचना है? कठिन रास्ते से, लंबे रास्ते से, तकलीफ वाले रास्ते से तो नहीं पहुंचना चाहेंगे। ढूंढेंगे कौन सा सहज से सहज रास्ता है, सरल से सरल है, और सबसे शॉर्टकट भी हो, बिना कठिनाई का, बिना कोई तकलीफ का, तो राजयोग वो मार्ग बताता है। ये रॉयल पथ है, राजपथ है। आजकल बड़े पथ बना रहे, हाईवेज बना रहे हैं, जो सहज हम पार हो जाएं बिना किसी छोटी छोटी गलियों में गुजरने से, बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के सामने आने के। एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, सामने कोई गाड़ी है ही नहीं, सामने वाले दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा से मिलन मनाने का बहुत सुंदर रास्ता ये राजयोग है। तीसरा, जो इसे प्राप्ति है, ये भी सबसे ऊंची है, क्योंकि प्राप्तियां भी कई प्रकार की हम चाहते हैं। कोई धन की प्राप्ति चाहता है, कोई यश की प्राप्ति चाहता है, कोई मान की प्राप्ति चाहता है, कोई वस्तुओं की प्राप्ति चाहता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति कौन सी है? कई कहेंगे ना, बहन जी हमारे पास सब कुछ है, भगवान की दया से कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी हम यही चाहते हैं कि जीवन में शांति आ जाए, खुशी आ जाए, शक्ति मिलती रहे। हम शक्ति मांगते भगवान से, इतनी तू शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इसीलिए स्थूल प्राप्तियां ये कोई सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि स्थूल रूप में कितनी भी प्राप्ति हो जाए, परंतु अगर संतोष की प्राप्ति नहीं है तो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हम भिखारी है। इसीलिए कहा गया है ना, लोभी नर कंगाल है। लोभी व्यक्ति चाहे कितना भी उसको मिल जाएगा, फिर भी वो कंगाल ही कंगाल का है, क्योंकि संतोष रूपी धन तो उसके पास है ही नहीं। तो लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत। वो लोभी व्यक्ति खुद भी दुख पाएगा, दूसरों को भी दुख देगा, क्योंकि लेना है लेना है लेना है यही सोचेगा। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, यही सोचेगा तो उसके मन में शांति कहाँ होगी, चाहे कितना भी उसके पास धन क्यों ना हो। तो लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, निर्लोभी सदा सुखी ईश्वर हरदम देत। अंदर में अगर संतोष है तो परमात्मा से प्राप्ति अपने आप होती रहती है, क्योंकि सांसारिक प्राप्तियां तो हमारी परछाई के रूप में है। परछाई के पीछे पीछे दौड़ने से परछाई कभी हाथ नहीं आती। इसीलिए कहा गया, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। परछाई आगे है तो इसका मतलब प्रकाश पीछे है, और कोई परछाई के पीछे जाए तो प्रकाश से भी दूर हो जाएगा और परछाई तो हाथ आएगी नहीं। लेकिन अगर प्रकाश की ओर मुख मोड़ ले तो परछाई उसके पीछे पीछे आएगी, तो क्योंकि प्रकाश तो स्थिर है, वो नहीं आपके पीछे आएगा। परछाई अस्थिर है, वो आपके पीछे पीछे आएगी अगर प्रकाश की ओर हम जाएंगे तो दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ही प्रकाश के पास पहुंचे, परछाई तो हमारे में समा जाएगी। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति से सर्व प्राप्तियां अपने आप होती है, हमें उनके पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है, वो चाबी है। अर्थात परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों का खजाना है, खान है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। तो एक एक चीज मांगने की बजाय चाबी मिल जाए तो पूरी खान ही हमारी। ये राजयोग हमें सिखाता है। तो वो प्राप्ति जो हम आज तक जिसके भिखारी थे, वो अनुभूति हमें राजयोग कराता है। इसीलिए ये रॉयल योग है, राजपथ है। अब उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है? अब तक हम क्या समझते थे, परमात्मा से योग लगाना है, मन को उसमें लगाना है, तो हम स्थूल आधार लेते थे, चाहे मंत्र का आधार लेते हैं, चाहे माला का आधार लेते हैं, चाहे सामने मूर्ति होती है उसका आधार लेते हैं। आंखों के सामने कोई मूर्ति होगी, मुख पर कोई मंत्र होगा, हाथ में कोई माला होगी, और हम माला फेरते रहेंगे, मुख पर जाप चलता रहेगा, सामने मूर्ति होगी। लेकिन अनुभव कहता है कि हाथ में माला के मणके फिरते ही रहते हैं, उंगलियां तो घिस जाती है, मुख पर मंत्र चलता ही रहता है, आंखों के सामने मूर्ति होती है, लेकिन ये चंचल मन कहाँ होता है? वो बेलगाम घोड़े की तरह तो भटकता ही रहता, लटकता ही रहता, कहाँ न कहाँ। हम कई बार कहते अटकता है, चटकता है, भटकता है, लटकता है, न जाने क्या क्या। परंतु परमात्मा में लग जाए ये नहीं होता, क्योंकि स्थूल आधार सूक्ष्म मन को नहीं वश में कर सकते। मन सूक्ष्म है और आधार स्थूल है, अब कैसे सूक्ष्म मन ये स्थूल आधारों पर टिकेगा? आप किसी व्यक्ति को कहें कि फलाने को आप मत याद करो, भले कितना भी आप उसको रोको, आप उसको को टेलीफोन नहीं करना, उनसे मिलना नहीं है, उसको फैक्स नहीं करना है, ईमेल नहीं करना है, कोई कांटेक्ट नहीं रखना, सारे कांटेक्ट्स उसके खत्म कर दो, लेकिन क्या मन को रोक सकते हो? रोक सकते हो? हाँ रोक सकते हो, पर हाँ मन को कैसे रोक सकते हो? उस मन को कैसे अपने तरफ ले ला सकते हो? क्योंकि मन वहां जाता क्यों है पहले ये तो समझो। जो मन के जाने की आधार है वो आधार को परिवर्तित करना होगा ना। ये स्थूल चीजें आप कितना भी रोक दो, वहां से उसको ज्यादा प्यार मिलता होगा, इसीलिए मन वहां जाता है। जहां प्यार जाए है वहां तो मन अपने आप जाता है, बिना किसी के कहे या रोके भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि वहां से प्यार मिलता है। तो जैसे मन सूक्ष्म है, प्रेम सूक्ष्म है, तो प्रेम वो सूक्ष्म आधार है जो मन को परमात्मा की ओर ले जाएगा, न कि केवल माला या मंत्र या कोई मूर्ति, वो तो स्थूल है। इसीलिए कबीर का एक बहुत सुंदर दोहा है, सुना होगा आप लोगों ने, कि कर का मन का फेरत युग भया, पर फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का छोड़ कर, कौन सा मन का फेरो? मन का मन का फेरो। कर अर्थात हाथों के मन के फेरते फेरते तो युग बीत गए, उंगलियां ही घिस गई, पर मन का फेरा फिर भी नहीं फिरा, फिर भी वही शिकायत है कि मन तो बेलगाम घोड़ा है, मन चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, आदि आदि कितनी बातें मन के लिए हम कहते हैं। तो कर का मन का फेरत युग बीत गए, पर मन का मन का नहीं फिरा, अब कर का मन का छोड़कर मन का मन का फेरो। तो मन का मन का कैसे फेरना होता है ये राजयोग सिखाता है। मान लीजिए हमें एक मंत्र मिलता है ओम नमो शिवाय का, मान लो, और हमें कहा जाता है कि इस मंत्र का आप जाप करना, और दिन भर में 1,00,000 जाप होना चाहिए। अब चलिए हमने शुरू किया जाप करना, 1,00,000 की गिनती तो बहुत लंबी है, 100,000, 1,00,000 मानो, 100 बार 1,000 हो तब 1,00,000 हो। अब हम ओम नमो शिवाय का जाप शुरू करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर साथ साथ गिनते जाएंगे, अभी 100 हुआ, अभी 200 हुआ, अभी 500 हुआ, 1,000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, क्योंकि 100,000 तक पहुंचना है। तो आखिर क्या होगा, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन 100,000 तक गिनती करते करते वहां पहुंचे तो योग हमारा किसके साथ हुआ? है? गिनती के साथ हुआ या शिव के साथ हुआ? अब बताइए, हमको तो शिव से योग लगाना ना, इसीलिए तो हमने योग के लिए हमने जाप किया, पर शिव से तो योग लगा ही नहीं, गिनती से अवश्य लग गया कि 1,00,000 बार जाप करना है। अब परमात्मा हमें कहते हैं जिससे प्रीत होती है उसके लिए गिनती या कोई लिमिट क्यों रखें? एक पत्नी क्या ये सोचती होगी कि आज मुझे पति को केवल 10 बार याद करना है? ऐसे ऐसे सोचते हैं क्या माताएं? एक बच्चा सोचेगा कि आज मेरे मुझे अपने डैडी को केवल 100 बार ही याद करना है बस। नहीं, जहाँ संबंध होता है वहां तो मन अपने आप जाता है, जहाँ प्रेम होता है वहां मन अपने आप जाता है। तो मन को कहीं भी ले जाने के लिए सूक्ष्म आधार चाहिए, क्योंकि जब हम कहते ओम नमो शिवाय, अब शिव में मन तब जाए जब पहले शिव का परिचय हो। शिव का परिचय ही नहीं है, वो शिव कौन है, वो कहाँ है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्या संबंध है मेरा उनके साथ, कुछ पता नहीं है। फिर चाहे आप करोड़ों बार ओम नमो शिवाय कहो ना, तो भी क्या होगा, मन शिव में नहीं लगेगा, मन भटकता ही रहेगा। तो ओम नमो शिवाय का अर्थ है कि मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं, सबसे सहज अर्थ तो यही है। अब मैं शिव को नमस्कार करने वाला मैं आत्मा हूं, ये भी तो पहचान हो, क्योंकि देह अभिमान में अगर हम हैं तो शिव को नमस्कार नहीं कर सकेंगे। अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति नमस्कार भी कैसे करेगा, नमस्कार या नमः करने लिए भी नम्रता चाहिए, बिना नम्रता के नमः भी नहीं होता, नमस्कार भी कहाँ होता है। नमस्कार जब करते सिर अपने आप झुक जाता है, अभिमान वश तो सिर ऊपर होता है, दसों ही उंगलियां दूसरे के तरफ सिर नीचे कि आप मेरे से 10 गुना महान है, यही नमस्कार होता है। और जैसे ही मैं नमस्कार करूंगी सिर झुकाकर 10 उंगलियां आपके तरफ, वो भी मेरे मेरे सामने ऐसे ही करेगा। तो किसी को झुकाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हा? स्वयं झुक जाओ, सबसे सुंदर तरीका। आप नमस्कार करेंगे वो भी आपको नमस्कार करेगा। तो परमात्मा को नमः करना है तो पहले हम उस अभिमान से तो हटे। आज जो देह का अभिमान भरा पड़ा है वो तो नष्ट हो, तब तो परमात्मा को नमः भी कर सके, तब तो परमात्मा भी हमारे करीब आ सके, तब तो मन उसमें लग सके। इसीलिए आत्मा का परिचय होना बहुत जरूरी है। कौन उसे नमः कर रहा है, शरीर थोड़ी नमः कर रहा है, शरीर तो विनाशी चीज है, आत्मा उसे नमः कर रही है, आत्मा उसे याद कर रही है, शरीर नहीं याद कर रहा है। तो मन वो ऊर्जा है जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जैसे ये हम मिलन का ही तो अनुभव कर रहे हैं, लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, कूलर चल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा, अच्छा लग रहा है, कानों में आवाज पड़ रही है, आनंद आ रहा है, ये मिलन का अनुभव है। परंतु ये स्थूल ऊर्जा काम कर रही है और मन भी यहाँ काम कर रहा है। भले स्थूल ऊर्जा काम कर रही है पर मन अगर बेलगाम घोड़े की तरह बाहर भटक रहा हो तो ये ऊर्जा भी किस काम की, बैठे हैं तन से यहाँ, मन से तो यहाँ है ही नहीं। इसीलिए भगवान के महावाक्य बार बार यही है, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ। तो मन लगता नहीं तो भगवान को ये शिकायत है कैसे लगाएं मन। तो परमात्मा ने 2 शब्द उनको दिए, 2 बातें कही, एक कहा वैराग्य और दूसरा कहा अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास, मन आज इतना चंचल है क्योंकि अनेकों में फंसा हुआ है, इसीलिए मन उसमें लगता ही नहीं है। अब कैसे निकले अनेकों में से, पहले तो आत्मा का ज्ञान हो, क्योंकि अगर हम अपने आप को शरीर समझेंगे तो व्यक्ति वस्तु वैभव वही मन में आएंगे, परमात्मा नहीं आएगा। इसलिए आत्मा की अनुभूति सबसे पहला कदम है परमात्मा में मन ले जाने के लिए। फिर अभ्यास, अभ्यास करते करते हम उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो राजयोग का आधार क्या है, 4 मूल आधार हम बताते हैं। पहला आधार है आत्मा और परमात्मा का परिचय। अब ये परिचय आपको मिला कल और परसों 2 दिन कि मैं इस शरीर से भिन्न एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, ये कदम कदम पर निश्चय पक्का हो। ये आंखें अपने आप कैसे देखेगी, ये तो खिड़की है, इनसे देखने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं। मुझ आत्मा का धाम तो इस साकार दुनिया से बहुत दूर, वो शांति का धाम है। मैं आत्मा तो इस संसार में मेहमान हूं। ये आत्म चिंतन जैसे करते जाएंगे, देह अभिमान खत्म होता जाएगा और मेरा मन शांत होता जाएगा। फिर परमात्मा में मन लगाना है तो परमात्मा की भी पहचान चाहिए, वो कौन है। तो वो भी परमात्मा ने अपनी पहचान हमें खुद दी है कि मैं कौन हूं। मैं भी एक आत्मा हूं लेकिन परमात्मा हूं। जब हम परमात्मा शब्द कहते हैं तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द मिलते हैं, परम प्लस आत्मा। अर्थात वो भी एक आत्मा है लेकिन सबसे ऊंची आत्मा। इसीलिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवन जिसका स्वरूप तो वही है ज्योति स्वरूप, वो भी एक आत्मा है लेकिन ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में, अपने धाम में सबसे ऊंचे है। इसलिए परमात्मा शब्द कहा और शिव शब्द कहा। कल आपको इसका पूरा परिचय बताया गया। अब कैसे इसमें मन लगे, तो पहला आधार है परिचय। आत्मा और परमात्मा का परिचय मन में दोहराना चाहिए, यही वास्तव में सच्चा मंत्र है। अगर आप मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ लें, शाब्दिक अर्थ मंत्र का, तो वो भी कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं है। मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है कोई राय, कोई सलाह। इसीलिए मंत्रणा शब्द आता है कि मंत्रणा माना कोई राय, भाई मुझे इसके लिए कुछ मंत्रणा दो, कोई राय दो, कोई सलाह दो। और जो सलाहकार होते हैं उनको मंत्री कहते हैं। पहले जमाने में राजाओं के जो सलाहकार होते थे उनको मंत्री कहते थे। आजकल तो मिनिस्टर ये जो गवर्नमेंट के उस प्रकार से हो गए, अभी तो राजा नहीं रहा ना, इसलिए वो मंत्री कहलाते हैं। तो जो मंत्र देता है, जो राय देता है, सलाह देता है, वो मंत्री हो गया। तो मंत्र अर्थात मन को राय देना, कैसे, बुद्धि के द्वारा राय देना। तो बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो जो बुद्धि मन को राय दे और मन इंद्रियों को वश में रखे। अभी जो हो रहा है ना, गाड़ी उल्टी चल रही है, इंद्रियां राय दे रही है मन को। जहां इंद्रियां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, ये रस मन को अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए मन चंचल हो गया है। और बुद्धि दब गई है, मन फिर बुद्धि को दबा देता है, अंतरात्मा की आवाज को ही मार डालते हैं। नहीं तो अंतरात्मा की आवाज सदा सही निर्णय देती है, पर उस आवाज को हम दबा देते, जैसे किसी का गला ही दबा दिया तो बेचारा वो बोल कैसे सकेगा। तो अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं, अपनी आत्मा के विरुद्ध कर्म करते हैं इंद्रियों के वशीभूत होकर के। इसलिए ईश्वर से भी बेमुख हो गए हैं तो खुद से भी बेमुख हो गए, अपने आप को भी नहीं जानते। इसलिए मन बेलगाम घोड़ा होकर भटक रहा है। तो मन क्यों नहीं लगा ईश्वर में, उसके तीन कारण थे और उसका निवारण राजयोग बताता है। पहला कारण था स्वयं का ज्ञान, दूसरा कारण था परमात्मा का ज्ञान, और तीसरा कारण है कि मन इतना आज चंचल जो हो गया है, दूषित हो गया है, जो परमात्मा उसमें स्थान ले भी कैसे। जैसे शुद्ध चीज रखने लिए बर्तन भी तो शुद्ध चाहिए ना, शुद्ध पात्र होगा तभी तो दूध उस पात्र में टिक पाएगा। कहावत है प्रसिद्ध कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है, ये कहावत है। अब कैसे कहावत बनी हम नहीं जानते, कौन गया होगा शेरनी का दूध निकालने के लिए, जो कहावत बना दी होगी कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। भाव है कि जैसी चीज वैसा उसका पात्र, उसका बर्तन। तो मन भी तो पात्र है ना, जिसमें परमात्मा की याद टिकती है। पर अगर उस पात्र में स्वच्छता हो तब तो वो याद टिके। अब स्वच्छ कैसे करे मन को, ये आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन केवल मंत्र शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं। तो मैं आत्मा हूं, मैं शिव की संतान हूं, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये बुद्धि के द्वारा मन को चिंतन देना होगा। तब ये मन रूपी पात्र शुद्ध होगा और परमात्मा की याद उसमें टिकेगी। तो पहला आधार मन को परमात्मा में लगाने के लिए है आत्मा और परमात्मा का परिचय। दूसरा आधार है परमात्मा से संबंध। हमारा संबंध हो उनके साथ तो मन वहीं लगेगा। जिससे संबंध होता है उसमें से मन हटता ही नहीं है। अगर वो व्यक्ति चाहे संसार से चला भी गया तो भी, क्योंकि संबंध इतना घनिष्ठ होता है और हम जानते हैं वो वापस नहीं आएगा इस दुनिया में, लेकिन इतना घनिष्ठ संबंध होने के कारण हम भुलाना चाहते तो भी भूल नहीं पाते, क्योंकि संबंध घनिष्ठ होता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं मेरे साथ सर्व संबंध जोड़ो तो मन सहज मेरे में लग जाएगा। आज हम गाते तो हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, लेकिन वो हमारे माता पिता बंधु सखा, उसका जो अनुभव हम लौकिक में जैसे माँ बाप से करते हैं वैसे परमात्मा से हम कर रहे हैं, वो नहीं होता, क्योंकि संबंध कहीं टूट गया है। अगर वो संबंध होता ना तो प्राप्ति भी होती, ये उसकी निशानी है, इसका प्रमाण है। पिता से बच्चे का अच्छा संबंध होता है तो बच्चा अधिकारी होता है, पिता उसको ही सब कुछ देगा। पर बच्चे ने पिता से संबंध ही तोड़ दिया है तो पिता उसको देगा भी क्यों, संबंध ही तोड़ दिया है। तो आज परमात्मा से हमें पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, करुणा, जिसका वो सिंधु है, वो अनुभूति हमें क्यों नहीं हो रही है जबकि हम उनके बच्चे हैं? क्योंकि संबंध कहीं टूट गया है। कैसे टूट गया है? जैसे अभी यहाँ बिजली जल रही है, अचानक सब फ्यूज हो जाए, सब उड़ जाए, अंधेरा हो जाए, तो क्या कहेंगे कि पावर हाउस से संबंध टूट गया है। फिर मीटर में जहां इनका मेन मीटर है, स्विच है, वहां देखेंगे भाई फ्यूज की वायर जो टूट गई है उसको फिर से जोड़ो, तो फिर से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, रबर को हटाना पड़ता है, कॉपर टू कॉपर जोड़ना पड़ता है। ट्यूनिंग करते हैं रेडियो की तो ट्यूनिंग करना पड़ता है तब हमको आवाज मिलेगी। तो वही मीटर बैंड, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ, उसी पर अपनी रेडियो की सुई को रखना होता है तब हम आवाज रेडियो से, रेडियो स्टेशन से ले सकते हैं। तो परमात्मा तो सर्व गुणों और शक्तियों का स्रोत है और हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी आज वो अनुभव नहीं हो रहा है और हम भिखारी की तरह मांग रहे हैं, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु शक्ति दो। अब भिखारी को कितना मिलेगा और बच्चे को कितना मिलेगा? और बच्चा अगर संबंधी तोड़ दे तो भी क्या मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आवश्यकता है इस टूटे हुए संबंध को जोड़ना होगा। अब कैसे जोड़े, उसकी विधि क्या है? आप देखेंगे जब किसी कुमार और कुमारी का संबंध जोड़ना होता है ना, अब वो तो एक दो को जानते भी नहीं होंगे, एक दो दोनों के परिवार एक दो को जानते भी नहीं है, पर बीच में कोई मिडिल मैन आया, कोई दलाल आया, मैट्रिमोनियल केस वो कराते हैं ना, चलो कहा कि अच्छा ये संबंध जोड़ो। तो भारत की संस्कृति में क्या करते हैं भाई, दोनों की जन्म पत्री ज्योतिषी को दिखाएंगे, जरा देखो भाई इनका योग है। तो योग होने के लिए या योग के लिए ज्योतिषी क्या करता है, मैचिंग करता है, उनकी जो कुंडली है उनको मिलाता है, और मिलाते समय क्या देखता है भाई, ग्रह संस्कार या स्वभाव राशि या जो कुछ भी है, जो ये सब मैच होते हैं, मिलते हैं। अगर मिलते नहीं है तो कहेंगे योग नहीं है। तो योग होने के लिए क्या चाहिए, मैच चाहिए, उनमें मिलना चाहिए। अब दूध ये तेल और पानी आपस में कभी नहीं मिल सकेंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी अलग है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन हम चाहते हैं, और हम क्या कहते हैं, परमात्मा तुम तो बहुत ऊंच हो और मैं तो नीच हूं, तुम तो पावन हो मैं तो पतित हूं, तुम तो कहीं सातवें आसमान में हो और मैं तो इस धरती का प्राणी हूं, तुम तो निर्गुण निरंजन निराकार हो और मैं फलाने नाम रूप वाला व्यक्ति हूं। मिलन कैसे होगा, होगा मिलन, होगा भाई मिलन कैसे होगा। हम दो प्रकार का अज्ञान व्यक्त करते हैं, इसीलिए ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। एक अज्ञान है भौतिक उपलब्धियों का घमंड, संसार में देखो क्या घमंड लगा पड़ा है, थोड़ा सा को धन मिल जाता है समझता है मेरे जैसा कोई नहीं होता है ना। वो एक चुटकुला एक कहावत है, मुहावरा है कि चूहे ने हल्दी की गांठ कहीं से पाई और सोचा मैं भी पंसारी हूं, हल्दी की जरा सी गांठ मिली और सोचा मैं पंसारी हूं। अब हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी हो गया क्या वो, और अभिमान जरा सा कुछ मिलता है समझता मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन ये जो कुछ भी भौतिक प्राप्तियां हैं ये तो सब क्षणभंगुर है, विनाशी है, आज है कल नहीं होगी, उनका अभिमान करना कितना निरर्थक है। लेकिन हम करते हैं तो इसको हम अज्ञान कहते हैं, क्योंकि ईश्वर के सामने तो ये सब नहीं चलेंगे ना। तो ईश्वर के सामने नहीं चलेंगे तो उनका अभिमान रख करके हम क्या पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो फिर दूसरी ओर भी हम अज्ञानता क्या व्यक्त करते हैं, ईश्वर के आगे वो अज्ञानता व्यक्त करते हैं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दास हूं, कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं, न जाने कितनी हीनता अपने प्रति व्यक्त करते हैं भगवान के सामने। दुनिया के आगे अभिमान और भगवान के आगे हीनता, अब दोनों ही अज्ञान है। क्यों अज्ञान है हीनता भगवान के आगे व्यक्त करना, क्योंकि दूसरी ओर हम उनको मात पिता कहते हैं, तो मात पिता इतने ऊंचे और बच्चे इतने नीच, तो ये किसका अपमान हुआ। किसी का माता पिता अच्छे बड़े रॉयल खानदान का हो, राजा हो, और वो बच्चा कहे कि मैं तो कंगाल हूं, ये तो राजा का नाम बदनाम होता है। बेटा तो राजकुमार होना चाहिए, उसका भी तो वही ठाट होगा जितना राजा का ठाट होता है, कोई कम थोड़ी होगा। तो हम भगवान के बच्चे हैं और हम अपने आप को इतना नीच पापी कह रहे हैं, अब ये भी अज्ञान है। तीसरी ओर भी एक अज्ञान हम व्यक्त करते, इसलिए भी परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ पा रहा है। वो तीसरा अज्ञान कौन सा है, हम समझे मैं ही भगवान हूं, अब ये भी हमको यहाँ बताया जाता है मैं ही भगवान थोड़ी हूं। तो भगवान को अज्ञान हुआ क्या कि अगर मैं ही भगवान हूं और मुझे पता ही नहीं चला मैं भगवान हूं। भगवान को भी अज्ञान हो जाए तो वो भगवान कहेगा। हाँ, आत्मा को जरूर अज्ञान होता है, आत्मा खुद को भूल जाती है, परमात्मा तो सदा ही ज्ञान का सागर है, क्योंकि आत्मा उसकी संतान है। बच्चे भूल सकते हैं, बच्चा अपना घर भूल जाएगा पर पिता उसको ढूंढ निकालेगा ना। कई बार गुमशुमा बच्चे की तलाश अनाउंस होता है रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में, तो पिता ही तो डालेगा अपने बच्चे का लिए एडवर्टाइजमेंट या जो कुछ भी है, बच्चे को तो पता ही नहीं, पिता ही ढूंढ निकालेगा अपने बच्चे को। तो हम आत्माएं भी भूल जाती है अपने आप को स्मृति और विस्मृति के चक्र में आकर के। पर जब विस्मृति हो जाए तो स्मृति कौन दिलाए, वो परमात्मा ही फिर से स्मृति दिलाता है। इसीलिए आत्मा उसे याद करती है और ज्ञान मांगती है, असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये क्यों मांगती है ज्ञान? क्योंकि ये ज्ञान जिससे हम खुद को पहचान सके, आपको ईश्वर को पहचान सके, अपने अमरत्व को अनुभव कर सके। अब वो अमरत्व का अनुभव कराने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है और आत्मा की पहचान देनी पड़ती है। तभी क्या पहचान दी है? जिसमें कुछ समानता भी है आत्मा और परमात्मा के बीच में, पर अंतर भी बहुत है। अब वो समानता का चिंतन करते करते संबंध जोड़ दो, क्योंकि जैसे किसी से योग करना है तो अंतर तो बहुत होता है, पर जो समानता जहां है उसमें अगर वो मैच हो जाता है तो कहेंगे हाँ योग है। तो तीन बातों की समानता है आत्मा और परमात्मा के बीच में। अब इस समानता का चिंतन करते करते संबंध जोड़ सकते हैं जो संबंध आज टूट गया है। पहली समानता क्या है? स्वरूप की समानता। आत्मा ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, एक जैसा ही स्वरूप है। इसीलिए देखेंगे आत्मा की भी यादगार भक्ति मार्ग में है और परमात्मा की भी यादगार भक्ति मार्ग में है, स्वरूप एक जैसा ही है। आत्मा की यादगार किस नाम से है? शालिग्राम नाम से। और परमात्मा की यादगार किस नाम से? शिवलिंग नाम से। इसका बहुत सुंदर उदाहरण हमने जम्मू में देखा। हम जम्मू जब गए थे तो वहां एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, देखा है ना आप लोगों ने? ये पानीपत के जो आए होंगे सबने देखा होगा, गए हैं? किसने देखा है वो मंदिर? बहुतों ने देखा है। उस मंदिर की बड़े सुंदर विशेषता हमने पाई, जिससे ये सिद्ध होता है कि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। उस मंदिर में क्या है कि अनेक छोटे छोटे कमरे हैं और हर कमरे में पत्थर के स्लैब्स बने हुए, इतने बड़े बड़े पत्थर के स्लैब्स, और एक एक पत्थर पर अनेकों हजारों लाखों छोटे 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 क्या कहते हैं उसको, प्रोट्रूजन्स इंग्लिश में कहते हैं, वो निकले हुए जैसे लिंग निकले हुए छोटे से, इस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ों, किसने गिनती तो किए नहीं होंगे, कौन गिनती करेगा, कितने कमरे हैं न जाने। अब ये सब क्या है? ये सब आत्माओं की निशानी है, आत्माएं अनेक है। और उसी के पास ये एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एक ही शिवलिंग। तो आत्माएं अनेक और परमात्मा एक, देखो कैसे सिद्ध होता है। तो स्वरूप में दोनों समान है, ये नहीं कि परमात्मा एक माना कोई बड़ी साइज है उनकी, वो भी एक आत्मा है लेकिन परम। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं भाई ये बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी का मतलब थोड़ी कि साइज में बड़ा है, लेकिन अपनी अथॉरिटी में बड़ा होगा, धन में बड़ा होगा दुनिया में, तो इसीलिए बड़ा कहते हैं। तो परम शब्द का अर्थ होता है सुप्रीम। जैसे कोर्ट में हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट्स होती है, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। भले उसकी साइज किसी हाई कोर्ट से छोटी भी हो, सर्वोच्च न्यायालय की, कई हाई कोर्ट्स इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उनसे छोटी हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हाई कोर्ट साइज में बड़ी है माना वही सबसे बड़ी कोर्ट है, नहीं, साइज की इसमें बात नहीं है। हम किसी को महात्मा कहते हैं तो महात्मा का मतलब ये थोड़ी कि उनकी आत्मा की साइज बड़ी हो गई और बाकी की आत्मा की साइज छोटी है। आत्मा तो आत्मा है, ज्योति स्वरूप है। इसीलिए परम आत्मा भी एक आत्मा है लेकिन सब में परम। तो स्वरूप में समान है अनादि है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अविभाज्य है, अदृश्य है। ये पांच बातें आत्मा के लिए भी कहेंगे और परमात्मा के लिए भी कहेंगे। अजर, अमर, अविनाशी, अविभाज्य और अदृश्य। तो आत्मा हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं। अब संतान हूं का अर्थ क्या है? कई समझते हैं आत्मा उसका अंश है, अंश का अर्थ समझते उसका टुकड़ा है। अब जब अविभाज्य कहा, आत्मा का विभाजन नहीं होता, तो टुकड़े कहां से आए हम? अब यहां अंश का अर्थ क्या है कि जो परमात्मा के गुण हैं, अंश मात्र में आत्मा में भी वही गुण है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर जरूर है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा शांति का सागर है, तो शांति का गुण जैसे परमात्मा में है, आत्मा में भी वही गुण है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। वो प्रेम का सागर है तो आत्मा प्रेम स्वरूप है, वो आनंद का सागर है तो आत्मा आनंद स्वरूप है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, पर हाँ संख्या में उसका अंश जरूर है, वो सागर है, उनकी महिमा सागर से की गई है, क्योंकि सागर माना बेअंत, या तो सागर से उनकी महिमा करते या तो सूर्य से उनकी महिमा करते। ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। या सागर से महिमा करते हैं कि सागर परमात्मा की स्तुति सरस्वती भी लिखे, सागर को स्याही बनाए, पेड़ों को कलम बनाए आदि आदि, तो भी नहीं लिखी जाएगी। इससे सिद्ध है कि परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, पर उस अपरम अपार महिमा वाले परमात्मा की हम संतान है, आत्मा बच्चे, पर हम भी अनादि अविनाशी है, अविभाज्य अदृश्य है, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तो गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, अंश किस रूप में है? संख्या में, उनकी क्वांटिटी, गुण की क्वांटिटी में, क्योंकि आत्मा भूल जाती है अपने गुण को। जैसे गागर खाली हुई तो सागर में भरने जाएंगे, पर जल तो वही है। तो आत्मा का गुण समझो गागर जितना, आत्मा भूल गई। परमात्मा का गुण सागर जितना, बेअंत, नदी नाले तालाब सूख जाएंगे, सागर कभी नहीं सूखेगा। इसलिए वही आकर के हमको स्मृति दिलाते हैं, हे आत्माएं पहचानो अपने आप को। आत्मा क्यों भूल जाती है? क्योंकि प्रकृति के संग में आती है, प्रकृति के संग में आते 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 आत्मा को विस्मृति हो जाती है। ये भी एक नियम है संसार में। अब जब ये हमने चिंतन किया तो मन परमात्मा में लगने लगेगा, क्योंकि गुणवत्ता वही है, तो गुण भी वही, स्वरूप भी एक जैसा, और धाम भी एक ही है, एक ही घर है हमारा। जो परमात्मा का घर वही आत्माओं का घर। हम कई बार दुखी होकर के कहते, हे भगवान बुलाओ मुझे अपने पास, हमें नहीं जीना है संसार में। हम कहते हैं दुखी होकर के क्यों भगवान को पुकारते हो या बुलाओ ये कहते हो? आपका तो वो घर है, आपको निमंत्रण थोड़ी चाहिए उस घर में जाने के लिए। आत्मा का वही घर है जो परमात्मा का घर है, मन से चले जाओ वहां। अपने घर में जाने के लिए निमंत्रण चाहिए क्या? या वो बुलाए तब आप जा सकोगे क्या? हे भगवान बुला लो अपने पास, बुला लो अपने पास। क्यों भगवान को आवेदन करते हो या फरमाइश करते हो? राजयोग कहता है चले जाओ मन से, एक सेकंड में वहां पहुंच सकते हो। कैसे? हाँ, एक सेकंड में पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो? आप यहाँ बैठे अपने घर में पहुंचने में कितनी देर लगेगी मन से? हाँ? पल भर। तो परम धाम पहुंचने में कितनी देर लगनी चाहिए? हाँ? पल भर। पल शब्द भी में भी समय लगता है, कहने में भी समय लगता है। हमने सोचा बस पहुंच गए, और महसूस कीजिए वो अखंड ज्योति का महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, और उस महतत्व के अंदर मैं ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति के सामने विराजमान हूं। कई लोग शिव और ब्रह्म के भी अंतर को नहीं समझते, शिव को ब्रह्म, ब्रह्म को शिव एक ही समझ लेते, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। हम कितने मूझ गए हैं जो हम न खुद को समझ पा रहे, न घर को, न परमात्मा को, हम सब में मुझ गए। अब ये चार बातें समझो। एक है आत्मा, जिसको हम शालिग्राम के नाम से पहचानते हैं। दूसरा है परमात्मा, जिसको हम शिव नाम से पहचानते हैं। तीसरा है ब्रह्म, हम आत्माओं का धाम है, वो ब्रह्म घर है हम आत्माओं का, वो ब्रह्म अखंड ज्योति का महत्त्व है, प्रकाश का महत्त्व है। जैसे ये नीला आकाश हम जानते हैं, ये तत्व है, तो वो महत्त्व ब्रह्म घर, वो घर भी वास्तव में हम आत्माओं का रहने का स्थान है। परमात्मा शिव है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो चेतन शक्ति है। ब्रह्म तत्व तो जड़ घर है, जैसे ये आकाश महत्त्व है। और चौथा शब्द जिसमें हम मूंझ जाते हैं वो है ब्रह्मा। कई लोग कहते हैं ये ब्रह्म कुमारियां आई है। अब ब्रह्म की कोई कुमारियां होती है क्या? ब्रह्म तो हम आत्माओं का घर है, उसकी थोड़ी कुमारियां होंगी, पर हाँ ब्रह्मा की कुमारियां जरूर है, ब्रह्मा की हम सब संतान जरूर है, ब्रह्मा के हम सब बच्चे जरूर है, क्योंकि वो अलौकिक रूप से हमारे पिता हैं, जिसके द्वारा परमात्मा नई सृष्टि की रचना करते हैं। लेकिन ब्रह्मा को हम परमात्मा थोड़ी कहते हैं। कई लोग समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां अपने इनके गुरु को ही भगवान मानती है। हम कहते हैं भगवान तो क्या, इनको गुरु भी नहीं मानते हम, ब्रह्मा बाबा को हम गुरु भी नहीं मानते हैं। यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है जहाँ बैठे हैं। दादी जी आपसे आज मिलेंगे, बस सोफा पर ही बैठते हैं, हम भी उनके पास ही जाके बैठते, कोई गुरु के रूप में थोड़ी है। दादी माना बड़ी बहन, जैसे हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं, हिंदी में ग्रैंडफादर को दादा कहते हैं, लेकिन सिंधी में बड़े भाई को दादा कहते हैं, जैसे कन्नड़ा में अन्ना, बहन को अक्का, इस रूप से कहते हैं। तो इसी रूप से ब्रह्मा बाबा को हम गुरु भी नहीं कहते, वो अलौकिक पिता है, पारलौकिक पिता, तो आत्मा का एक ही निराकार ज्योति स्वरूप है। तो तीन बातों की समानता का चिंतन ये मन को परमात्मा तक पहुंचाएगा। तीन बातें कौन सी? स्वरूप में समान, दूसरा गुणों में समान, तीसरा धाम में समान। एक ही घर है हमारा, जो पिता का घर वही बच्चों का घर। ये दुनिया तो रैन बसेरा है, मुसाफिर खाना है, सराय है, रंगमंच है, ये घर नहीं है अपना, न प्रकृति कोई अपनी चीज है, ये तो यहाँ की शक्ति चीज है। मैं आत्मा तो अपने धाम की निवासी हूँ, और मुझे वापस उसी धाम में जाना है जहां से मैं आत्मा इस संसार में आई। कई पूछते हैं क्यों आए, जब उस घर में हम थे तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों बनाई सृष्टि भगवान ने, ये भी प्रश्न करते हैं। तो हम उनका बहुत सुंदर रूप से जवाब देते हैं, जो शिव बाबा ने हमें बताया। पहला तो ये बात हम समझे कि तीन चीजें अनादि और अविनाशी है, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये शिव बाबा ने राज स्पष्ट किया है कि इनको किसी ने बनाया नहीं, अगर किसी ने बनाया हो तो वो उनसे ऊंचा हो जाए। वो तीनों शक्ति अनादि अविनाशी कौन सी? एक आत्मा, जिसको हम पुरुष कहते हैं, दूसरा परमात्मा, जिसको परम पुरुष कहते हैं, और तीसरे ये प्रकृति। ये तीनों ही अनादि और अविनाशी है, इनको किसी ने भी नहीं बनाया। आज प्रकृति के बारे में भी कितने मंतव्य है, ये प्रकृति कहां से आई, विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं है। वो ब्लैक होल कहते हैं, डार्क होल कहते हैं, वो ब्लैक होल भी कहां से आया, जिसमें विस्फोट हुआ, वो विस्फोट भी कैसे हुआ, वो हीट कहां से आई, वो ब्लैक होल जो उसमें ऊर्जा थी वो कहां से आई? समथिंग मस्ट कम फ्रॉम समथिंग, इट कांट कम फ्रॉम नथिंग। ये भी प्रश्न का जवाब नहीं है विज्ञान के पास कि चेतना कहां से आई। चेतना भी चेतना से ही आएगी, अचेतन से चेतन नहीं आ सकता है। तो वो चेतना कहां से आई? तो प्रकृति की भी अपनी चेतना जरूर है, एक एक कोशिका में अपनी चेतना है, लेकिन आत्मा की चेतनता अलग है। आत्मा की चेतनता अर्थात जिसमें सोचने की शक्ति, जिसमें समझने की शक्ति, जिसमें कर्म करने की शक्ति, फिर उस कर्म को अपने में रिटेन करके आगे जन्म तक ले जाने की शक्ति, ये आत्मा है जिसको कहा मन बुद्धि संस्कार। अब खेल जो है वो दो के बीच में, खेल तीन के बीच में नहीं है, खेल पुरुष और प्रकृति के बीच में। तो कई कहते क्यों आना हुआ इस संसार में, अगर हम आत्मा परम धाम में थी तो प्रकृति का आधार लेने की जरूरत ही क्या थी। अब इसका हमें अर्थ या उत्तर भगवान देते हैं, शिव बाबा देते हैं। क्या उत्तर देते हैं शिव बाबा? कि देखो हर आत्मा के अंदर जो मूल संस्कार है, उन संस्कारों में कर्म करना के कर्म करने का भी संस्कार है। तो हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, आत्मा के अंदर कर्म करने के संस्कार निहित है। तो कई कहते किस लिए इस कर्म भी हम क्यों करें, पर आत्मा में ही वो संस्कार निहित है। अब कर्म करने लिए प्रकृति चाहिए, तभी तो कर्म कर सकेंगे। एक कैसेट में बहुत अच्छा गीत है लेकिन कैसेट प्लेयर भी तो चाहिए, बिना कैसेट प्लेयर के आप वो कैसेट का गीत कैसे सुन सकेंगे। कि एक बहुत अच्छा होशियार सर्जन है, ऑपरेशंस करता है, लेकिन ऑपरेशन करने लिए उसको इक्विपमेंट साधन भी तो चाहिए ना, बिना साधन के वो कैसे ऑपरेशन करेगा। एक बहुत अच्छा कलाकार है, आर्टिस्ट है, लेकिन पेंट ब्रश भी तो चाहिए, पेंट्स भी तो चाहिए, कैनवस भी तो चाहिए, तो साधन भी तो चाहिए, तभी तो अपनी कला प्रदर्शित कर सकता है वो। तो आत्मा एक बहुत बड़ी कलाकार है, कर्म करने की कला है उसके अंदर, इसलिए उसको शरीर भी जरूरी चाहिए, ये पहली बात। और इसलिए भी शरीर चाहिए क्योंकि आत्मा के अंदर जो गुण निहित है वो गुणों की भी अनुभूति तब कर सकती है जब वो शरीर में हो। आप देखेंगे जब जैसे कोई व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, एकदम निद्रा की अवस्था है, डीप स्लीप, अब वो सुषुप्त अवस्था में उसको कुछ अनुभूति होती है क्या? होती है, निद्रा की भी अनुभूति नहीं है, है क्या? सोचते निद्रा की भी अनुभूति है, है या नहीं है? नहीं है। गहरी नींद की भी अनुभूति उसको तब होने लगती है जब वो जागृत होता है। जब वो जागता है वो कहेगा अच्छा मुझे इतनी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। तो गहरी नींद की अनुभूति भी जागृत अवस्था में ही अनुभव होती है। अब आप सोचिए, तो आत्मा को शरीर तो चाहिए, इसलिए हम शरीर को निग्लेक्ट ना करें। शरीर का अपना महत्व जरूर है, गाड़ी का अपना महत्व है, पर ड्राइवर का अपना महत्व है। ड्राइवर को गाड़ी ना कहें, गाड़ी को ड्राइवर ना कहें। ड्राइवर के पास लाइसेंस बहुत बढ़िया है, खूब मेहनत करके ड्राइविंग लाइसेंस लिया, पर गाड़ी ना हो तो किस काम का लाइसेंस? पूजा करेगा क्या लाइसेंस की? ना भाई, लाइसेंस किस लिए मिला है? एक सर्टिफिकेट केवल मिला क्या कि हाँ गाड़ी जानता है चलाना? पर केवल गाड़ी हमारे पास मर्सिडीज बेंज गाड़ी हो, 10-15 लाख की गाड़ी हो, बहुत बढ़िया गाड़ी, रोज मॉलिश पॉलिश मालिश करे, पर ड्राइवर ही नहीं है किस काम की वो गाड़ी? तो दोनों ही चाहिए ना, पर दोनों के बीच में मैं कौन? तो साधन को साधक न समझे और साधक को साधन न समझे, दोनों के अंतर को समझ करके दोनों का मेल जरूर करे, पर उसमें से मैं कैसे इस साधन का उपयोग करूं ये मैं समझूं। तो इस संसार में हम क्यों आए? कर्म करने लिए आए। और अपने गुणों को व्यक्त करने के लिए आए, इसीलिए आए, क्योंकि व्यक्त करने से अनुभव होते हैं, चिंतन करने से अनुभव होते हैं, नहीं तो सुषुप्त अवस्था में है वो गुण। कोई भी कला जब तक उसको कर्म में लाओ तब तक वो अनुभव में भी नहीं आएगी और बढ़ेगी भी नहीं। इसलिए आत्मा क्यों आई संसार में, जो आत्मा में ये गुण नहीं थे, ये गुण कर्म में व्यक्त करने के लिए आई। कर्म भी क्यों किया, क्योंकि कर्म करना भी एक कला है, तो वो कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो तो आपकी कला का निखार होगा, और उन कर्मों में गुण व्यक्त करो तब आपके गुणों की जो कला है वो भी उनका भी निखार होगा। ये गुण बांटने से बढ़ते हैं, और इसीलिए भी आए तीसरा कारण इस संसार में आने का, परमात्मा का नाम रोशन करने लिए आई। भारत सरकार बच्चों को, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर के विदेश भेजती है, क्यों भेजती है, क्यों भेजती है, हा? देश का नाम रोशन करें। तो हम परमात्मा का नाम रोशन करें, हम किसके बच्चे हैं? लेकिन हम तीनों ही लक्ष्य भूल गए, क्योंकि खुद को ही भूल गए, तो कहां से आए वो भी भूल गए, किस लिए आए वो भी भूल गए, सब भूल गए। तो स्मृति और विस्मृति का खेल इस संसार में हम आत्मा ही करती है, प्रकृति के संग में आकर के। जब स्मृति है तो ये संसार सतयुग है, और जब विस्मृति हो गई तो संसार कलयुग हो गया। पर ये खेल है, पर विस्मृति से स्मृति में कौन लाए, ये परमात्मा का कार्य है, क्योंकि वो सदा ही स्मृति में रहते हैं। तो जब हमने ये समझा, अब इस संबंध को फिर से जोड़ो जो टूट चुका है। तीन बातों की समानता, स्वरूप में समान, धाम में समान और गुणों में समान। अब ये कैसे हम चिंतन करेंगे, मन की आंख परमात्मा को परम धाम में देखे, मैं भी उसी धाम में हूं, अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा परमात्मा के सामने हूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है। इसलिए भी उनको निराकार कहा, क्योंकि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है उनका स्वरूप, जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं, और गुणों में बेअंत से बेअंत है, जिनकी कोई मेजरमेंट नहीं, कोई उसकी माप नहीं। एक वाक्य में उनके स्वरूप की हम अनुभूति कर सकते हैं, वो बिंदु में सिंधु है, इन्फिनिटी इन एन इन्फिनिटेसिमल डॉट। और परमात्मा एक शब्द में उनके स्वरूप की पहचान। अब उस स्वरूप को निहारो, निहारो तो कैसे निहारेंगे, जब आपका उससे प्रेम जागृत हो। तीसरा आधार मन को परमात्मा में टिकाने का है, उनसे सच्चा प्रेम। जिससे प्रेम होता है उनसे तो मन हटता ही नहीं है। अब परमात्मा से आज मेरा प्रेम है, ये मैं अपने आप से पूछूं। आज प्रेम नहीं है ईश्वर से, आज स्वार्थ है ईश्वर में। भगवान ने कुछ मुझे दिया तो भगवान तुम बहुत अच्छे, और नहीं दिया तो भगवान जैसा कोई बुरा अन्य नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया। जब आवश्यकता पड़ी तब हे भगवान, कोई आपत आई, कोई कष्ट आया, कोई तकलीफ आई, कोई विघ्न आया, कोई रुकावट आई, कोई ऐसा ऐसी कोई समस्या आई, हे भगवान मदद करो। और जब आराम से है तो भगवान तो भूला हुआ है। इसीलिए कबीर का दोहा वो याद आता है, सुख दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, पर जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। अब सुख में सिमरण हम करते नहीं, दुख आया तब हे भगवान का माना स्वार्थ है ना, और सुख में सिमरण माना प्रेम है। अब वो प्रेम है नहीं, इसीलिए स्वार्थवशी हम उनको याद करते हैं। तो प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि व्यक्ति वस्तुओं में प्रेम बट गया है। कई कहते हैं, जब हम पूछते हैं भगवान कहाँ है, कहते दिल में है। हम कहते हैं दिल में है तो जरा याद रखना, भगवान को दिल में स्थान देना माना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। भगवान को दिल में स्थान दिया तो किसी अन्य को दिल में स्थान नहीं दे सकते हैं। अगर हजारों को अनेकों को दिल में स्थान दे देंगे तो क्या होगा? हा? वो गीत याद आता है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्योंकि अनेकों को दिल में स्थान दे दिया, फिर दिल दिया और दर्द ही लिया, और क्या होगा? तभी गीत वो बनते हैं, पिक्चर बनती है, दिल दिया दर्द लिया। क्योंकि किसको दिल दे रहे हैं? जो विनाशी है। और जब विनाशी को दिल दिया, एक दिन जब विनाश हुआ तो दर्द ही तो लिया। दिल उसको देते हैं जो बेवफा बन सकता है, तो एक दिन तो दुखी होंगे ही ना, क्योंकि वो बेवफा बन गया। दिल उसको देते हैं जिसमें कितने अवगुण भरे हुए हैं, तो आज गुण दिखाई दिए तो प्यार हुआ, कल अवगुण दिखाई देगा तो नफरत भी आएगी, तो नेचुरली छुट्टा छेड़ा हो जाता। आजकल डाइवोर्स क्यों जल्दी हो रहा है? वो एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक लड़की से प्यार हो गया, चुटकुला ही है, तो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, चलो सुंदरता पर मोहित तो हो गया, पर बड़ी गुस्से वाली थी। तो गुस्से वाली तो थी तो सुंदर तो थी ना, तो कहा कोई बात नहीं, तेरे गुस्से में भी प्री प्यार है। हा? तेरे मुख तो चंद्रमुखी की तरह है, तुम चंद्रमुखी हो। तो शादी हुई, तो शादी हुई तो सुंदरता तो थी, प्रेम भी था, पर प्रेम में गुस्सा तो बढ़ता गया बढ़ता गया, तो चंद्रमुखी के बदले क्या हो गया? सूर्यमुखी हो गया। हा? सूर्यमुखी ताप तो बढ़ता गया ना, चंद्रमा का ताप और सूर्य के ताप में तो अंतर है ना। फिर बच्चे हुए तो अधिकार और बढ़ गया, बच्चे हो गए तो फिर तो उसका चेहरा कैसा बन गया? ज्वालामुखी बन गया। हा? तो चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, सूर्यमुखी से ज्वालामुखी, फिर छुट्टा छेड़ा, लो जा तुम अपने घर में, हम अपने घर में सुखी। आजकल यही हो रहा है। तो प्रीत किससे होनी चाहिए? सुंदरता से प्रीत करो, लेकिन सबसे सुंदर कौन? सबसे सुंदर कौन? ये सुंदरता तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चमड़ी की सुंदरता केवल स्किन डीप, और अंदर सुंदरता नहीं हो वो सुंदरता कितने दिन सुख देगी? तो उससे प्रीत करो जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उस सुंदरम से प्रीत करो, तो कभी धोखा नहीं खा सको खाओगे, कभी दिल देकर दर्द लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर और किससे प्रीत करो, और किससे आकर्षित होते हैं? सत्य चीज से आकर्षित होते हैं। कई व्यक्ति कहते ना, जो झूठ बोलता है मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ये सत्यवादी नहीं है, झूठ बोलता है। क्योंकि आत्मा सत्यवादी है, सत्य है, अविनाशी है, तो इसलिए सत्य चीज प्यारी लगती है, झूठी चीज प्यारी नहीं लगती है। अब मेरे सामने सच्चा सोना हो और नकली सोना भी हो, दोनों मुझे बताया जाए कि ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये 9 कैरेट है, ये रोल्ड गोल्ड है, ये नकली है, अब आप पसंद कीजिए कौन सा आपको चाहिए। दोनों बता दिया, अब दोनों में से आप कौन सा चुनेंगे? नकली वाला, भले चमक उसकी ज्यादा है लेकिन ये सच्चा है, तो कौन सा पसंद करेंगे? नकली करेंगे? समझदार व्यक्ति क्या करेगा? भाई ये तो चार दिन की चांदनी है, ये तो सच्चा सोना है ना, तो सत्य ही पसंद करेंगे ना। अब परमात्मा कौन है? सत्य है, सत्य माना अविनाशी, तो प्रीत अविनाशी से करो ना। विनाशी से क्या प्रीत है? विनाशी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, अलविदा करना पड़ेगा हाथ जोड़ करके, चाहे इच्छा हो या ना हो। तो अविनाशी से प्रीत करो ना, आत्मा से प्रीत करो, परमात्मा से प्रीत करो। आत्मा से प्रीत के लिए कोई हद रखने की जरूरत ही नहीं है, पर शरीर से केवल प्रीत है वो विकार बन जाता है, या तो काम वासना का रूप ले लेगा, या तो मोह का रूप, या तो राग का रूप ले लेगा। प्रेम तो बहुत शुद्ध चीज है, लेकिन लोगों ने आज उसको समझा नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तो परमात्मा से सच्ची प्रीत कैसे हम करें, उसकी विधि क्या है? जितना जितना हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करते जाएंगे, उतना उतना परमात्मा से प्रीत बढ़ेगी। भक्ति का अर्थ भी क्या है? प्रेम। भक्ति का सच्चा अर्थ तो प्रेम है ना, लेकिन आज वो प्रेम कहाँ रहा? आज स्वार्थ भर गया है, इसीलिए भक्ति का सच्चा स्वरूप ही लुप्त हो गया है। कैसे स्वार्थ है? हम स्तुति तो गाते हैं ईश्वर की, प्रभु तुम ऐसे हो, प्रभु तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे खूब स्तुति गा लेते हैं, और फिर कहेंगे प्रभु मुझ पर रहम करो। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास गए ना, उनको कहेंगे हे आप इतने महान हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, जरा मुझ पर दया करो। पता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? उसको मस्का लगाना। जब किसी से कोई बात बना माना किनसे कुछ बात चाहिए ना, कोई काम चाहिए, तो पहले उसकी खूब तारीफ करेंगे, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप मेरा ये काम कर दो वो। अब जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो अपनी तारीफ कभी पसंद नहीं करता, कभी नहीं पसंद करेगा, कभी काम की बात करो, अब क्या चाहते हो मुझसे? अगर मुझसे ये चीज चाहिए थी तो पहले ही कह देते थे, मेरी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं जानता नहीं हूं क्या मैं कौन हूं जो आपकी तारीफ से पिघल जाऊंगा? काम की बात करो। इसलिए कई लोग कहेंगे वे प्लीज लेट अस डू बिजनेस, खाली तारीफ के पुल मत बांधो। तो भगवान की भी हम तारीफ करें, स्तुति करें, महिमा करें, फिर हम छोटी मोटी कोई चीज मांग ले, ये तो जैसे उसको पहले नरम किया, फिर नरम करके उसको अपना बनाया, वैसे ये तो स्वार्थ है, ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम में तो त्याग होता है, सच्चे प्रेम में तो कुर्बानी होती है, सच्चे प्रेम में तो समर्पणमयता होती है, न कि स्वार्थ होता है। अगर स्वार्थ आ गया तो वो प्रेम है ही नहीं। और सच्चा प्रेम दोनों तरफ का चाहिए, तब वो प्रेम परमानेंट बन सकता है। दोनों तरफ इट शुड बी टू वे ट्रैफिक। अगर मेरा समर्पण है तो उनका भी समर्पण हो, मेरा त्याग है तो उनका भी त्याग हो। अगर एक तरफा त्याग और एक तरफ अधिकार, तो वो भी ज्यादा समय प्रेम नहीं चलता है। प्रेम माना जितना ही त्याग हो उतना ही फिर अधिकार भी हो, दोनों तरफ। जैसे हम कहते हैं ना, जहां हम अधिकार की बात करते तो कर्तव्य की भी तो बात करें, क्यों अधिकार की बात क्यों करते हैं दुनिया में? इसी प्रकार परमात्मा से हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारा भी तो कुछ समर्पण हो। हम एक कदम आगे जाएंगे तो वो 10 कदम आगे आएगा। हमारा भी तो कुछ त्याग हो तब तो भाग्य बने। पर त्याग हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हे भगवान तुम मेरा ये काम कर देना तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो हमारा त्याग कितना? 100 रुपए का प्रसाद। और उसका तो उनसे तो बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं हम। अब पहले तो ये प्रश्न है कि क्या भगवान ने काम किया तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, और नहीं किया तो है? नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे भाई, क्योंकि काम ही नहीं किया है जी, तो नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि काम नहीं किया। अच्छा चलो 100 काम किया भी और आपने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, वो 100 रुपया है किसका? आपका है क्या? आपका है जो आपने चढ़ाया भगवान पर, बड़ी मेहरबानी की 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, वो भी तो उसी का ही है ना। देखो आरती में हम क्या गाते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जबकि सब कुछ उनका है तो ये 100 रुपए क्या मेरे थे जो मैंने चढ़ाए? और मैं नशा दिखाऊं कि मैंने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया या 1000 रुपए का प्रसाद, कल 100 तो कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे हुआ जैसे सूरज को दीपक दिखा रही हैं और हम कहते हैं भाई मेरे पास भी कुछ शक्ति है, सूरज को मेरे दीपक की क्या जरूरत है। जो सारे संसार को खिलाने वाला उसको मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा रही हूँ, उसका भूखा है क्या? वो तो प्रेम का भूखा है। तो इसीलिए प्रेम ये ऐसा सद्गुण है जो हमारे में निहित है। अब ये कैसे हमारा बढ़े जो मन उसमें लगे। अब राजयोग उसका इसकी विधि बताता है कि परमात्मा की जितनी आप स्तुति गा सको, गाओ मन में, खूब गाओ खूब गाओ, जितनी महिमा कर सको, और महिमा गाते 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 उसमें खो जाओ। तुम शांति के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, दया के सागर हो, गाते जाओ और गाते गाते उसके उससे प्रेम बढ़ेगा। प्रेम ये साइकोलॉजी है, अगर किसी के गुणों का चिंतन करते हैं तो उनसे प्रेम बढ़ता है, और अवगुणों का चिंतन किया तो नफरत बढ़ती है। दिस इज साइकोलॉजी। किसी ने किसके बारे में आपको गलत ना उल्टा बुरी बात कह दी, तो जब तक उसकी बात आपको पता नहीं थी तब तक तो आप उसको अच्छी दृष्टि से देखते होंगे, पर जैसे ही पता चल गया कि ये व्यक्ति ऐसा है फिर आप उसको कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? उसी दृष्टि से, ये ऐसा है, बदल जाएगी आपकी वृत्ति। तो परमात्मा से प्रेम तब बढ़े जब हम उनके गुणों का गायन करते 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 उसमें खो जाएं, और अधिकार रखें। हम भिखारी की तरह क्यों मांगे उनसे? हम भिखारी थोड़ी है। एक गीत है, तू प्यार का सागर है, हम एक तेरी एक बूंद के प्यासी हम। भगवान कहते हैं बूंद के प्यासी क्यों बनते हो, सारा सागर पी जाओ ना, किसने मना किया है? सागर कभी रोकेगा क्या आपको कि मेरे से जल मत पियो, मत लो? पूरा सागर खुला है। सूरज कभी रोकेगा क्या? नहीं, मेरी से एक ही किरण तुमको लेनी है, बस दो चार भी नहीं, पूरा सूर्य मेरे सामने खड़ा है। वो तो दाता है, देने वाला दाता तो देता ही रहता है। हम थक सकते हैं, वो क्यों थकेगा जो हम एक बूंद के प्यासी बनते हैं? हम अधिकारी हैं, हम भिखारी नहीं हैं। इसलिए राजयोग में हम ये नहीं कहेंगे हे प्रभु एक बूंद के प्यासी हम, नहीं, हम कहेंगे शिव बाबा तू प्यार का सागर है और मैं आत्मा आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूं, और प्रेम स्वरूप बन के प्रेम के सागर में खो जाओ। हाँ, खो सकते हो। इसको कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ये विलीनता की अवस्था राजयोग की एक स्थिति है, जिस स्थिति में हम अनुभव करते जैसे मैं प्रेम स्वरूप उस प्रेम के सागर में खो गई। कैसे? उस सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम में। वो सत्यम है, अविनाशी है, सत्य का अर्थ होता है अविनाशी, स्थिर, एक रस। वो शिवम है, कल्याणकारी है, दाता है। कहते ना शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक दूर। वो सुंदरम है, सर्व गुणों का सागर है और मैं आत्मा उनके गुणों की अधिकारी। तुम शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप, और खो जाओ शांति के सागर में जैसे बूंद सागर में समा गई। और खोते 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 समाते 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 वही स्वरूप हो गए। इसको कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और आत्मा परमात्मा बन गई। अब परमात्मा कोई स्टेटस नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई पद नहीं है जो हम जाकर के बनेंगे। ये भी कैसा आश्चर्य, परमात्मा कोई हम कैसे बनेंगे? वो तो सदा ही है। जैसे आप अपने बच्चों के पिता बनते हो, माता बनते हो, पर अपने पिता के आगे तो आप बच्चे ही हो ना, कि क्या हो? अपने पिता के आगे आप कौन हो? बच्चे ही है। चाहे अपने पोतों के दादा होंगे, पर आपके पिता जीवित होंगे तो आपके आगे आप उनके आगे बच्चे ही हो। शिक्षक के आगे कोई विद्यार्थी सदा ही विद्यार्थी है, चाहे उसके अनेक शिष्य और या विद्यार्थी बन जाए। मुझे याद है मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर बहुत बुढ़ा है, बचपन में मुझे पढ़ाता था, आज भी उसको नाज है कि मेरी स्टूडेंट हाँ अनेकों को पढ़ाती है, मतलब जो कुछ भी है, पर फिर भी मैं उनको तो सर ही कहूंगी ना, क्योंकि कम से कम मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया। भले वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बुजुर्ग हो गए, वही रिटायरमेंट ले लिया, जो कुछ भी, लेकिन अभी तक भी मेरे सर तो है ना। तो टीचर सदा ही टीचर है, गुरु सदा ही गुरु है, चाहे शिष्य उसका कितना आगे क्यों ना चला जाए। कहा जाता ना, गुरु गुड़ तो चेला चीनी, है ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिसने दुनिया में नाम कमा लिया। आज विवेकानंद को सब जानते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कोई भी नहीं जानता है, हार्डली कोई जानते होंगे, लेकिन फिर भी कहने में आएगा किसका शिष्य। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस सदा उनसे ऊंचे ही होंगे। तो परमात्मा सदा ही परमात्मा है, सदा ही परमात्मा है, क्योंकि उनका कर्तव्य ही सबसे न्यारा है। इसलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, ईश्वर की गत मत सबसे न्यारी है, उनका आने का समय भी सबसे अलग है। इसीलिए परमात्मा का कर्तव्य को जान करके, उनको पहचान करके, उनसे योग लगाओ, और योग लगा करके उनके गुणों को अधिकार के रूप में ग्रहण करके उसमें हो जाओ, समा जाओ, तो वो आत्मा अपने सपने आप में वो संपूर्ण बन जाएगी, अपनी स्थिति में संपन्न हो जाएगी। जिस प्रकार एक रिचार्जेबल बैटरी पावर हाउस से बिजली लेती है ना, चार्जर में डालते हैं तो रिचार्ज हो जाती है, तो रिचार्ज हुई अपनी चार्ज में फुल हो गई, तो आत्मा भी अपनी चार्ज में फुल हो जाएगी, अभी वो डिस्चार्ज हो गई है। जैसे किससे शक्ति लेती है, परमात्मा से, जो सदा ही परमात्मा। तो चलिए अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चार बातें हैं आधार में। पहला आधार है परिचय, दूसरा आधार है संबंध, मेरे सब संबंध परमात्मा के साथ है, तीसरा आधार है स्नेह, और चौथा आधार है प्राप्ति। ये प्राप्ति एक बार आत्मा ने अनुभव कर ली उस ईश्वरीय रस की, परमानंद की, फिर और सब रस फीके लगने लगते हैं। तो वो प्राप्ति का अनुभव हम करें, जो हमें ये संकल्प भी ना आए कि मन कोई हटे भी। अभी तो आता है कैसे लगे, फिर तो होगा कि हटने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतना लग जाएगा। अब ये अनुभूति हम करें, और विधि क्या है, तीन बातों की समानता का चिंतन। ये चिंतन करते 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 हम उसमें खो जाएं। तो सीधा बैठेंगे, ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब दिशा का परिवर्तन कीजिए, अपने मन को परम धाम में ले जाइए, विचार शक्ति परम धाम की तरफ जाए। इस देह भान को भूलना है, आत्म अभिमानी बनना है, परमात्मा का चिंतन करना है, और उनके गुणों में समाना है। तो सीधा बैठेंगे और मन में दो बातें अवश्य ध्यान पर रखें। पहली बात कि निश्चय पक्का हो, मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, और उसकी खुशी आए, खुशी अंदर में खुशी आए कि ये जो गुणों की मैं कमाई करने जा रही हूं आत्मा, ये सच्ची कमाई मेरे साथ चलने वाली है, इसलिए खुशी बढ़ती जाए। और दूसरा नशा चढ़ाओ, नशा कहते हैं नाम खुमारी नानिका चढ़ी रहे दिन रात, तो ये नशा चढ़ जाए, मैं किसकी संतान हूं, मेरा पिता कौन है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है और कैसे मैं उसका अधिकारी हूँ। तो ये नशा चढ़ जाए तो बाकी सब नशे फीके पड़ जाएंगे और इसी नशे में हम मग्न हो सकेंगे। तो निश्चय और नशा ये साथ साथ मन में रहे और चिंतन करते 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 खो जाओ स्वयं को, आत्मनिश्चय करें। आंखें भर खुली रहे, सामने देखें, सामने से प्रेरणा लें। अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? अंतरात्मा उत्तर देगी, मैं एक आत्मा हूं, दिव्य ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, भ्रकुटी के मध्य विराजमान चैतन्य ज्योति हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर मैं आत्मा सृष्टि रंग मंच पर अभिनय कर रही हूं। अब इस मंच से मुझे लौट कर घर जाना है, वापस अपने धाम, पांच तत्वों से पार मुझ आत्मा का निवास स्थान है, अखंड ज्योति का महतत्व है। एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। जहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं, कितनी निरसंकल्पता है यहां, अखंड ज्योति सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त है। इसी महतत्व में मैं आत्मा मन की आंख से परमात्मा को देख रही हूं। जो रूप में अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, वो अमर ज्योति है, दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है। जितना ही वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उतना ही वो बेअंत है गुणों में। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। खो जाइए शांति के सागर में। और मन शांति से भरपूर हो जाए। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में निहित है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। मैं आत्मा शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरकर मैं आत्मा वापस लौट रही हूँ। साकारी सृष्टि पर, कर्म क्षेत्र पर, ताकि कर्म द्वारा भी मैं शांति की शक्ति को प्रकट कर सकूं। यही राजयोग की सिद्धि है। ओम शांति, शांति, शांति।
ओम शांति। आदरणीय शीलू बहन जी का तहे दिल से शुक्रिया है जो आपने राशियोग की विधि के द्वारा प्रेम के सागर से हमें लवलीन होना, खो जाना सिखाया। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी पिछले 38 वर्षों से अपना समर्पित जीवन इस विद्यालय के अंतर्गत जी रही हैं। आप विद्यार्थी काल से ही आध्यात्मिक जीवन बनाने की प्रेरणा मिली और आप साकार पिताश्री के सानिध्य में आए और विगत 38 वर्षों से आप परमात्मा शिक्षाओं का, आज्ञाओं का साकार स्वरूप हैं। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। आपने कई बार देश विदेश में जाकर आध्यात्मिकता की मशाल विश्व भर में जगाई है। आप राजयोग प्रशिक्षण पिछले 30 वर्षों से मुख्यालय के अंतर्गत रहकर ही दे रही हैं। आपकी राजयोग प्रशिक्षण पर बहुत गहरी अनूठी आपकी छाप है। आस्था टीवी, सोनी, जागरण और संस्कार चैनल्स पर आपके कार्यक्रम जीवन मूल्य अन्य विषयों से पिछले कई वर्षों से निरंतर आ रहे हैं। आप का चिंतन बहुत सूक्ष्म और गहन है। आप हम टीचर्स बहनों को भी अपने कुशल प्रशिक्षण से ओतप्रोत करती हैं। आपका 3 भाषाओं में नियंत्रण है। भारत की भूमि पर मुख्यालय के अंतर्गत जब विश्व भर से विदेशी भाई बहन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आते हैं तो आप उनकी भी आध्यात्मिक पालना विशेषताओं से भरकर उनके अंदर करती हैं। आपका 3 भाषाओं में, हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी में संपूर्ण नियंत्रण है। इसके साथ साथ आप शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका हैं। किन किन विशेषताओं को आपके समक्ष हम रखें, आपकी विशेषताओं का वर्णन करना, सूर्य को दीपक दिखाना है। ऐसी महान आत्मा के द्वारा आज राजयोग प्रशिक्षण को हम सब ने प्राप्त किया। हम सभी आदरणीय राजयोगिनी शीलू बहन जी के तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया। ओम शांति।